नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार के कारगर कदमों के फलस्वरूप भारत में एलपीजी उत्पादन 25% बढ़ा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के फैसले का भारत ने स्वागत किया। विशेष उड़ानों के जरिए लेबनान से 177 और कतर से 500 से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौटे। ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों और संयुक्त अरब अमीरात के विमानन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर ईरान से फौरन हमले रोकने को कहा। एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप क्वालिफायर में हैदराबाद में भारत ने वेल्स को 4-1 से हराया और बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उद्घाटन मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलेंगे। और अब समाचार विस्तार से। भारत में रसोई गैस एलपीजी के घरेलू उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। ये बढ़ोतरी सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों के बाद हुई है।
भारत सरकार ने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25%।
नई दिल्ली में कल शाम पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में संयुक्त सचिव सुश्री सुजाता शर्मा ने बताया कि 8 मार्च 2026 को सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल परिसरों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और देश के कच्चे तेल के आयात का लगभग 70% हिस्सा अब होर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर से आ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सरकार जीसीसी और पश्चिम एशियाई देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जारी संयुक्त बयान को हमने अपनाया है। संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारी ओर से मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में एक टीम के अगले सप्ताह अमेरिका जाने की संभावना है।
भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड बीपीसीएल ने नागरिकों को यह आश्वासन दिया है कि सरकार एलपीजी आयात को सुचारू और निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बीपीसीएल ने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति और एलपीजी आयात को प्रभावित करने वाली नाकाबंदी के कारण एलपीजी आयात प्रभावित हुआ है। ऐसे में उपलब्ध आपूर्ति को नियंत्रित तरीके से वितरित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। भारत ने आपूर्ति में मौजूदा बाधाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के फैसले का स्वागत किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सहयोग में सक्रिय भागीदार भी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत वैश्विक ऊर्जा बाजारों की बदलती स्थिति, खासकर मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। भारत ने पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों की सहायता बढ़ा दी है। लेबनन और कतर से सैकड़ों भारतीयों को वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लाया गया है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार 177 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था कल उनके नियोक्ता द्वारा आयोजित चार्टर उड़ान से नई दिल्ली वापस लाया गया। बेरूत रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लेबनन में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने इस समूह को विदाई दी। इस बीच कतर स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर में फंसे 500 से ज्यादा भारतीय कल कतर एयरवेज की उड़ानों से भारत पहुंचे। यात्री नई दिल्ली और मुंबई सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए रवाना हुए। दूतावास ने यह भी बताया कि कतर एयरवेज आज भारत के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानों का संचालन करने वाला है, एक नई दिल्ली के लिए और एक मुंबई के लिए, ताकि आगे की यात्रा सुगम हो सके। राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक 2026 पेश करेंगी। कल लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। सदन में वरिष्ठ भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लगभग चार दशकों के बाद लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए खेदजनक है।
स्पीकर जब निर्णय देते हैं, वो निर्णय हो सकता है हमें भी अनुकूल न हो, हो सकता है विपक्ष को भी अनुकूल। इसके पर मंतव्य तो सभी सदस्यों का हो सकता है, मगर स्पीकर के निर्णय पर शंका नहीं कर सकते, इनकी निष्ठा पर शंका नहीं कर सकते। विपक्ष अगर निर्णय की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है तो माननीय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में कृषि खाद्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगी। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का विषय है प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना। ये आयोजन नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
आज से शुरू हो रहे तीन दिवसीय सम्मेलन का विषय गति को आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयां प्राप्त करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ एमएल जाट ने बताया कि यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतिगत कार्य योजना और उससे जुड़े तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श करना है। सम्मेलन में विशेष मंचों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला किसान मंच और कृषि खाद्य क्षेत्र के अगली पीढ़ी के नेताओं को जोड़ने और उनके बीच नेटवर्क स्थापित करने के लिए युवा मंच शामिल है। इस सम्मेलन में भारत और दुनिया भर के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, महिला किसानों, स्टार्टअप्स और विद्यार्थियों सहित 700 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के शुरू किए गए अवसंरचना विकास कार्यक्रमों से स्थानीय लोगों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली के पंजप्पुर में कार्यक्रम में तमिलनाडु में 5,650 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो नियमित एक्सप्रेस और एक यात्री रेलगाड़ी सहित 5 नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक विकसित तमिलनाडु बनाना है, इससे एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा।
दिस प्रोजेक्ट आर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लीन एनर्जी, पेट्रोलियम रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, हाईवे, रेलवे एंड रूरल रोड। दे विल बूस्ट एनर्जी एक्सेस कनेक्टिविटी एंड क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब फॉर द यूथ ऑफ तमिलनाडु।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया है और संयुक्त अरब अमीरात में विमानन ढांचे पर हमले की कोशिश की है। अबूधाबी प्रशासन के अनुसार पुराने अबूधाबी हवाई अड्डे के पास आग लग गई, जिस पर फौरन काबू पा लिया गया। इससे पहले 11 मार्च को दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक समेत 4 लोग घायल हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर ईरान से खाड़ी देशों पर हमलों को फौरन रोकने की मांग की है। परिषद का कहना है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। ये प्रस्ताव 13 मतों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि दो देशों ने मतदान से दूरी बनाए रखी। एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप क्वालिफायर 2026 में भारतीय टीम ने कल शाम हैदराबाद में पूल बी के मुकाबले में वेल्स को 4-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की भिड़ंत इटली से होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के पहले चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये चरण 28 मार्च से 12 अप्रैल 2026 तक खेला जाएगा। इस दौरान 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए तिथियां घोषित होने के बाद ही पूरे टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में जिन समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है उनमें शामिल हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का गिरना, देश में पहली बार इच्छा मृत्यु को सर्वोच्च न्यायालय से मिली अनुमति और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से पैदा हालात। जनसत्ता की पहली सुर्खी है शोर के बीच ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। पंजाब केसरी की पहली खबर है पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति, लोकसत्ता ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला का निर्णय सुनाते हुए भावुक हो जाने का समाचार बॉक्स में प्रकाशित करते हुए विलियम शेक्सपियर की उस मशहूर पंक्ति टू बी और नॉट टू बी को छापा है जिसका उल्लेख करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। वहीं पश्चिम एशिया में जारी जंग के चलते रसोई गैस की किल्लत के समाचार को पत्र ने पेट्रोलियम मंत्रालय के स्पष्टीकरण के साथ प्रकाशित किया है।
धन्यवाद फरहत। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार के कारगर कदमों के फलस्वरूप भारत में एलपीजी का उत्पादन 25% बढ़ा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के फैसले का भारत ने स्वागत किया। विशेष उड़ानों के जरिए लेबनन से 177 भारतीय और कतर से 500 से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौटे और बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।